ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल द्वारा अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने के फैसले का स्वागत किया। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कपड़ा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के मंडपों का उद्घाटन हुआ और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेड न्यूज को समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ है। आज शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 413 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया। अशोक विहार में 453, बवाना में 452 और वजीरपुर में 450 AQI दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता के मद्देनजर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ग्रैप का स्टेज 3 लागू किया हुआ है। CPCB के अनुसार हवा में प्रदूषण कण PM10 का स्तर 100 से कम और PM2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्य के लिए सही माना जाता है। दिल्ली NCR की हवा में शनिवार शाम 4 बजे PM10 का स्तर 328 और PM2.5 का स्तर 232 अंक पर दर्ज किया गया, जिसके चलते शहरवासियों को गले में खराश, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। राजधानी में आज लगातार 4थे दिन कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता के स्तर में भी गिरावट आई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में रात के समय और अगले 2 दिन के दौरान धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए भाजपा की राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 70% प्रदूषण उन राज्यों से आ रहा है जहां भाजपा की सरकार है। श्री राय ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर जानबूझकर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने का आरोप लगाया।
दिल्ली के लोगों को जो आज प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, उसमें जो अभी रिसर्च सामने आ रहा है कि केवल 30% दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है, 70% प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आ रहा है और उन राज्यों से आ रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 3-3 सरकारें हैं। दिल्ली के अंदर हरियाणा से डीजल की बसें भेजी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जानबूझ करके दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं।
वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पर्यावरण मंत्री के इस बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर डीजल बसें दिल्ली में घुस रही हैं तो इसके लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। श्री सचदेवा ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से सवाल किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर डीजल वाहनों का प्रवेश रोकने की क्या व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जल रही पराली का जहरीला धुआं और दिल्ली की टूटी सड़कों से उठने वाली धूल राजधानी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण पर नियंत्रण करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमल में नहीं लाया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि लगातार गंभीर होते प्रदूषण के कारण लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया। इस डिपो में कुल 223 महिला कार्यबल हैं, जिनमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर हैं। ये डिपो 70 बसों का संचालन करता है, जिसमें 40 वातानुकूलित और 30 गैर वातानुकूलित बसें शामिल हैं। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि हमारा लक्ष्य सखी पहल के तहत शहर भर में ऐसे कई डिपो स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि सखी डिपो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में बढ़ते अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल द्वारा एजेंसियों को कार्रवाई करने का निर्देश देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने शहर में बढ़ते अवैध प्रवासियों पर चिंता व्यक्त की। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों और अन्य संगठनों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायतें उठाई गई हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
हमारी राजधानी दिल्ली सुरक्षित रहे उसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी ने कुछ एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जगह जगह पर ऐसी शिकायतें व्यापारी संगठन और आरडब्ल्यूएस द्वारा की जा रही हैं। लेकिन अपनी दिल्ली सुरक्षित रहे उस विषय को भी आम आदमी पार्टी के नेता राजनीतिक चश्मे से देखे। उनको मिर्चे लग रही है कि क्यों रोहिंग्या के खिलाफ एक्शन लिया जाने की बात की जा रही है और मेरी दिल्ली के लोग सुरक्षित रहते हैं और उसके लिए एजेंसी काम करती है तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि एक वोट विशेष के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करती है तो उन्हें तकलीफ हो रही है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने कहा कि यह मेला कारीगरों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर मंडप में जनजातीय थीम पर हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद रखे गए हैं।
हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें इस वर्ष हम लोगों ने खास करके बिरसा मुंडा जी की जन्म शताब्दी 150 साल उसको मना रहे हैं, जनजातीय थीम पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को रखने का काम किया है।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस वर्ष मंडप का विषय हरित MSME है। मंत्रालय ने बताया कि मंडप सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा व्यवसाय संचालन में बदलाव के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देता है। इस वर्ष मंडप में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज की उपस्थिति में इंद्रपुरी स्थित रेलवे हॉल्ट पर फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। श्री रवनीत सिंह ने बताया कि यहां पर बने 58 साल पुराने ब्रिज की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, इसलिए रेलवे यहां 7 करोड़ रूपये की लागत से नया फुट ओवर ब्रिज बना रहा है। इस मौके पर दिल्ली से सांसद सुश्री स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आभार व्यक्त किया।
आज जिस फुटओवर ब्रिज का यहाँ पर शिलान्यास करा गया है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, उसको अगर आप देखें तो उससे लगभग फायदा मोटा मोटा 6 लाख लोगों को होता है। नारायणा गांव से लेकर नारायणा विहार, इंदरपुरी, बुद्ध नगर से लेकर अगर आप थोड़ा और इसका आयाम बड़ा करें तो पूसा रोड तक, यानी कृषि कुंज पूसा रोड तक, यहाँ पर 5 से 6 लाख लोगों का इससे फायदा होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका का उल्लेख किया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम और आपातकाल के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई। श्री वैष्णव ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पेड न्यूज समाज के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि पाठक तेजी से पारंपरिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की ओर जा रहे हैं। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के अल्गोरिदम, पूर्वाग्रह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों का भी उल्लेख किया।
The platforms are digital mammoths which use algorithms for deciding what needs to be shown, and these algorithms are designed to maximize engagement. Unfortunately, these algorithms tend to prioritize content which incites strong reactions.
सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में गलत सूचना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज आज एक बड़ी चिंता का विषय है। श्री मुरुगन ने खबरों और लेखों की प्रामाणिकता की जांच के लिए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की सराहना की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप 3 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। श्री सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों, एसएसआईआईडीसी सहित अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिले में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएं। उन्होंने सभी विभागों से वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित रखने के लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करने का आग्रह किया। श्री सिंह ने कहा कि सभी जिलावासी भी वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपायों का पालन कर सक्रिय रूप से इसमें भागीदार बने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और इसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को अब विश्व स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। आज नई दिल्ली में चौथे लेखा परीक्षा दिवस पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न देश भारतीय लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।
दुनिया के देश हमारी इस लेखा परीक्षा का अध्ययन करने आते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भारत की लेखा परीक्षा को अपने आप अपनाएं, और इसीलिए हमारी संस्था प्राइड के अंदर भी कम से कम 50 देश के अधिकारी कर्मचारी भारत में आते हैं।
दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों में सामाजिक जागरूकता और उनके समग्र विकास के लिए प्रतिदिन एक शपथ दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस नई पहल का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। विभाग ने बताया कि ये कार्यक्रम दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक अनूठा प्रयास है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नई दिल्ली में एक मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग उनकी सरकार पर भरोसा दिखाते हैं तो विकास पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने दिल्ली में लगभग 900 करोड़ रुपए की कोकीन की सबसे बड़ी खेप का भंडाफोड़ किया है। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि अब तक की जांच से पता चला है कि विदेश से लोगों का एक समूह इस गिरोह का संचालन कर रहा है। जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की कुछ मात्रा कुरियर या छोटी कार्गो सेवाओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने बताया कि जहांगीरपुरी से समयपुर बादली के बीच ट्रेन सेवाएं आज रात 9:46 से लेकर कल सुबह 7:02 तक स्थगित रहेंगी। डीएमआरसी के अनुसार इस दौरान समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर 18 और 19 तथा हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली में सवेरे घने कोहरे के साथ आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल द्वारा अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने के फैसले का स्वागत किया। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कपड़ा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के मंडपों का उद्घाटन हुआ और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेड न्यूज को समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।